कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की ना जहाँ मतलब जहाँ एक इंसान लगभग 1000 साल तक जिंदा रहता हो।
हाँ, सुनने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म के प्लॉट जैसा लगता है।
बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ आसमान से उतरे प्राणी इंसानों के बीच चलते हों और प्राचीन दुनिया के क्रूर शूरवीर हर तरफ तबाही मचा रहे हों। मतलब ये सब प्राचीन दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में बाकायदा इतिहास के रूप में दर्ज है।
ये वाकई सोचने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि जब भी हम प्राचीन इतिहास का जिक्र करते हैं तो अक्सर लगता है कि हम कुछ ऐतिहासिक युद्धों या साम्राज्यों के पतन की बात करेंगे।
सही कहा।
लेकिन आज जो स्रोत हमारे पास मेज पर है, मेरा मतलब है डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज के जेनेसिस अध्याय 5 और 6 के विस्तृत लेक्चर नोट्स, वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं।
हाँ, और इसी वजह से इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य उस प्राचीन दुनिया को गहराई से समझना है। मतलब आज हम जेनेसिस के इन अध्यायों के जरिए प्राचीन वंशावलियों के रहस्यों, लोगों की वो सैकड़ों साल की लंबी आयु और सन्स ऑफ गॉड की रहस्यमयी कहानी पर बात करेंगे
और नेफिलम के खौफनाक सच से भी पर्दा उठाएंगे।
बिल्कुल, ये सब इसलिए ताकि हम समझ सकें कि आखिर जल प्रलय या जिसे हम फ्लड कहते हैं, उससे पहले मानव इतिहास किस खतरनाक दिशा में जा रहा था।
और पता है, अक्सर इन वंशावलियों को पढ़ते समय लोग बहुत जल्दी ऊब जाते हैं और बस पन्ने पलट देते हैं।
अरे हाँ, वो तो है। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी टेलीफोन डायरेक्टरी को पढ़ रहे हो। फलां का बेटा फलां हुआ, उसने इतने 100 साल जीवन जिया और
फिर उसकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन डॉक्टर मैथ्यूज के नोट्स इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनके अनुसार ये महज नाम नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की एक बहुत बड़ी महायोजना का, आप कह सकते हैं, एक ब्लूप्रिंट है।
अच्छा, एक ब्लूप्रिंट। ये काफी दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि प्राचीन मध्य पूर्वी संस्कृतियों में वंशावलियां महज जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड नहीं हुआ करती थी ना।
बिल्कुल नहीं, वे इतिहास को दिशा देने वाले एक ईश्वरीय नियंत्रण को दर्शाती थीं। अगर हम जेनेसिस अध्याय 5 को ध्यान से देखें तो आदम से लेकर नूह तक और फिर आगे इब्राहिम तक, ये पूरी कहानी एक खास मकसद से आगे बढ़ती है।
तो इसे इस तरह देखा जा सकता है कि कैसे इंसान के पतन के बावजूद एक बहुत बड़ी योजना व्यवस्थित रूप से आकार ले रही थी।
हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया को देखकर मुझे एक रिले रेस का ख्याल आता है, जैसे
अरे वाह, रिले रेस।
हाँ, जैसे हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को एक बैटन पास कर रही हो। मतलब एक धावक दौड़ता है, वो थकता है और फिर अगली पीढ़ी उस दौड़ को आगे बढ़ाती है ताकि अंततः लक्ष्य तक पहुंचा जा सके।
ये रिले रेस वाली उपमा काफी हद तक सटीक बैठती है, लेकिन इसमें एक तकनीकी पेज भी है। ये कोई सीधी रेस नहीं है ना।
सही कहा। डॉक्टर मैथ्यूज स्पष्ट करते हैं कि इस दस्तावेज में दो तरह की वंशावलियों का इस्तेमाल हुआ है। एक है रैखिक या लीनियर वंशावली, जहां पिता से केवल एक ही वंशज का नाम लिया जाता है।
मतलब वो मुख्य धावक जो सीधे लक्ष्य की तरफ जा रहा है।
एकदम सही। और दूसरी है खंडित या सेगमेंटेड वंशावली, जहां से शाखाएं निकलती हैं, जैसे नूह के 3 बेटे शेम, हाम और यापेत। ये वंशावली दिखाती है कि रेस का ट्रैक कैसे अलग अलग दिशाओं में फैल गया।
और शायद इस रेस के ट्रैक पे दो बिल्कुल अलग अलग टीमें भी दौड़ रही हैं। एक तरफ सिथ का परिवार है, जिसे काफी सकारात्मक और धार्मिक दिखाया गया है।
हाँ, और दूसरी तरफ केन का परिवार है, जो नकारात्मकता से भरा है, जहाँ लैमेक जैसा हिंसक और हत्यारा इंसान भी मौजूद है। इन्हीं दोनों परिवारों के बीच का जो अंतर है ना, वही इस पूरे अध्याय का केंद्र है।
बिल्कुल। और सेथ के वंश में एक ऐसा नाम आता है जो वंशावली के उस उबाऊ पैटर्न को अचानक से तोड़ देता है, हनोक।
हाँ, हनोक का जिक्र बहुत खास है।
मतलब आम तौर पर हर नाम के बाद एक वाक्य आता है और फिर उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन हनोक के मामले में यह वाक्य सिरे से गायब है।
और यहीं पर बात सच में बहुत रहस्यमयी हो जाती है। हनोक की उम्र ठीक 365 वर्ष बताई गई है। अब 365 तो सौर पंचांग के एक पूरे साल के दिनों की संख्या होती है।
तो सवाल ये उठता है कि क्या ये 365 महज एक शाब्दिक संख्या है या ये किसी बहुत बड़े ब्रह्मांडीय पूर्णता की ओर इशारा कर रहा है।
मुझे लगता है कि प्राचीन साहित्यों में संख्याओं का प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा होता था। 365 दिन सौर वर्ष को पूरा करते हैं, जो उस समय आकाशीय पिंडों की पूर्णता और एक तरह से ईश्वरीय व्यवस्था का प्रतीक था।
मतलब हनोक के 365 साल जीने का मतलब ये नहीं था कि बस गिनती पूरी हो गई।
बिल्कुल नहीं, यह इस बात का प्रतीक था कि उसका जीवन ब्रह्मांडीय और ईश्वरीय व्यवस्था के साथ पूरी तरह से लय में था। वो लेमेक जैसे हत्यारे से एकदम विपरीत था।
यानी वो ईश्वरीय व्यवस्था के साथ इतना घुला मिला हुआ था कि पाठ कहता है वो ईश्वर के साथ चला और फिर वो नहीं रहा, क्योंकि ईश्वर ने उसे ले लिया।
मतलब मृत्यु का अनुभव किए बिना ही सीधे ईश्वर के पास।
वाह, ये प्राचीन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वैचारिक भूचाल रहा होगा ना। उस समय मृत्यु को अंतिम सत्य माना जाता था।
हाँ, लेकिन हनुक की कहानी ने मृत्यु के बाद के जीवन, या हम कह सकते हैं एक अनुवादित जीवन की पहली स्पष्ट आशा दी।
ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश था कि भले ही पाप के कारण दुनिया में मृत्यु आ गई है, लेकिन अगर कोई पूरी तरह से ईश्वरीय व्यवस्था में चले तो मृत्यु अंतिम नियति नहीं है।
ये उम्मीद की किरण वाकई बहुत चमकदार है। लेकिन खैर, अगर उम्र के इन आंकड़ों को ही देखा जाए तो हनुक के बेटे मथुशेला की उम्र 969 वर्ष दर्ज है।
एक सेकंड, 969?
हाँ। अब इस बिंदु पर आधुनिक विज्ञान को मानने वाले किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या एक इंसान के लिए 969 साल जीना बायोलॉजिकली संभव भी है?
ये शंका बहुत स्वाभाविक है। मतलब सदियों से धर्मशास्त्री और वैज्ञानिक्स पर बहस करते आ रहे हैं। मैंने पढ़ा था कि डॉक्टर मैथ्यूज अपने नोट्स में बताते हैं कि इसके कई स्पष्टीकरण सुझाए गए हैं।
हाँ बिल्कुल, एक थ्योरी तो ये थी कि शायद ये किसी अकेले व्यक्ति की उम्र नहीं बल्कि पूरे कबीले की उम्र है।
अच्छा, यानी मथुशेला के नाम से चलने वाला परिवार 969 सालों तक प्रभाव में रहा।
हाँ, लेकिन जब हम हर व्यक्ति के पिता बनने की विशिष्ट उम्र का गणित लगाते हैं, जैसे कोई 187 साल की उम्र में पिता बना और उसके बाद बचे हुए सालों को जोड़ते हैं,
तो वो कबीले वाली थ्योरी धराशायी हो जाती है।
बिल्कुल, वो गणित काम ही नहीं करता।
तो अगर ये कबीले की उम्र नहीं है तो फिर इसका ऐतिहासिक या तार्किक आधार क्या बचता है? इसे कैसे समझा जाए?
इसे समझने के लिए हमें जेनेसिस से बाहर निकलकर उस समय के अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखना होगा। डॉक्टर मैथ्यूज प्राचीन सुमेरियन किंग लिस्ट का जिक्र करते हैं।
सुमेरियन किंग लिस्ट?
हाँ, ये मेसोपोटामिया का एक प्राचीन दस्तावेज है जिसमें जल प्रलय से पहले के राजाओं के शासनकाल दर्ज हैं। और पता है, वहां जो आंकड़े हैं वो जेनेसिस से भी हजारों गुना बड़े हैं। वहां कुछ राजाओं का शासनकाल 72,000 साल तक बताया गया है।
रुके, 72,000 साल? अरे ये तो इंसानी सोच से ही परे हैं। मतलब इसके सामने तो मथुशला के 969 साल बहुत छोटे और काफी यथार्थवादी लगने लगते हैं।
यही सबसे बड़ा सुराग है। ये सुमेरियन किंग लिस्ट इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि प्राचीन दुनिया में एक साझा स्मृति मौजूद थी। उन सभी संस्कृतियों को ये याद था कि जल प्रलय के पहले के लोग असामान्य रूप से लंबा जीवन जीते थे।
तो जेनेसिस का दस्तावेज असल में उस प्राचीन स्मृति का एक बहुत ही संयमित धर्मशास्त्रीय और संशोधित संस्करण पेश करता है।
बिल्कुल, ये 72,000 सालों के मिथक को नकारते हुए एक यथार्थवादी सीमा तय करता है, भले ही उस सीमा आज के नजरिए से बहुत बड़ी हो।
जंदे, इस पूरी प्रक्रिया को मैं आज की तकनीक के नजरिए से देख रहा था, जैसे कोई बिल्कुल नया स्मार्टफोन हो।
अच्छा,
कैसे?
जब वो नया होता है तो उसकी बैटरी की क्षमता बेहतरीन होती है ना, वो कई दिनों तक चलती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है सिस्टम में बहुत सारे फालतू एप्स और बग्स आ जाते हैं जिससे बैटरी लगातार कमजोर होती जाती है।
अरे ये तुलना तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन चलिए इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। ये सिर्फ बैटरी के कमजोर होने या फोन पुराना होने की बात नहीं थी, ये ऐसा था जैसे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही एक ऐसा घातक वायरस आ गया हो
जो हर नई पीढ़ी के साथ और ज्यादा विनाशकारी होता जा रहा था।
बिल्कुल, और ये वायरस था नैतिक पतन। जैसे जैसे दुनिया पाप के कारण पतित होती गई, प्रकृति और मानव शरीर का भी पतन हुआ।
मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि आयु का लगातार गिरना मानवता के नैतिक पतन का एक फिजिकल मीटर था? 100%, आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। जल प्रलय से पहले मथुशेला 969 साल जिए, लेकिन जल प्रलय के बाद शेम की वंशावली में औसत आयु तेजी से गिरकर 344 वर्ष रह गई।
बाप रे, इतनी भारी गिरावट।
हाँ, और कुछ पीढ़ियों बाद इब्राहिम 175 साल जिए, मूसा 120 साल और भजन संहिता 90 तक आते आते एक आदर्श आयु 70 से 80 वर्ष रह गई।
ये कोई प्राकृतिक विकास नहीं था, बल्कि ये उस वायरस का असर था जो इंसान की जीवन शक्ति को सोख रहा था। सच कहूं तो ये एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है,
है ना?
मतलब ये लंबी उम्र सिर्फ एक वरदान नहीं थी। जरा सोचिए, अगर कोई हिंसक इंसान 900 सालों तक जिंदा रहे तो वो कितनी तबाही मचाएगा।
बिल्कुल, लंबी उम्र का मतलब था पाप और बुराई का सदियों तक जमा होना, और यही जमा हुआ पाप अंततः उस बिंदु पर पहुंच गया जहां समाज की सभी मर्यादाएं टूट गईं।
और यहीं से हमारी चर्चा जेनेसिस अध्याय 6 के सबसे विवादित हिस्से में प्रवेश करती है, सन्स ऑफ गॉड और डॉटर्स ऑफ मेन की कहानी।
ओफो, ये प्राचीन साहित्य के सबसे जटिल हिस्सों में से एक है। अध्याय 6 स्पष्ट करता है कि जब इंसानों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी तो जो नैतिक और आध्यात्मिक सीमाएं ईश्वर ने तय की थीं, वो ध्वस्त होने लगी।
और प्राचीन समाज में सीमाओं का टूटना बहुत भयंकर माना जाता था, क्योंकि इसका मतलब था पवित्र और अपवित्र का आपस में मिल जाना।
सही कहा।
लेकिन यहां सबसे बड़ा रहस्य ये सन्स ऑफ गॉड हैं, मतलब ये कौन थे? अक्सर इसके बारे में बहुत सी अलौकिक थ्योरी सुनने को मिलती हैं।
सदियों से इस पर दो मुख्य विचारधाराएं रही हैं। पहली और सबसे लोकप्रिय थ्योरी ये है कि ये गिरे हुए स्वर्गदूत थे।
गिरे हुए स्वर्गदूत?
हाँ, यह विचार जॉब की किताब से आता है, जहां सन्स ऑफ गॉड शब्द का इस्तेमाल स्पष्ट रूप से स्वर्गदूतों के लिए हुआ है। इस दृष्टिकोण के अनुसार इन स्वर्गदूतों ने अपनी स्वर्गीय सीमाएं तोड़ी, इंसानी महिलाओं की सुंदरता देखी और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
अच्छा, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे अदन के बगीचे में हव्वा ने फल को सुंदर देखकर तोड़ा था।
बिल्कुल वैसा ही पैटर्न।
लेकिन दूसरी थ्योरी क्या कहती है, जिसका डॉक्टर मैथ्यूज समर्थन करते हैं?
डॉक्टर मैथ्यूज धार्मिक वंश की थ्योरी का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार हेब्रू भाषा में एलोहिम शब्द का अर्थ सिर्फ ईश्वर नहीं बल्कि धार्मिक या ईश्वरीय गुणों वाला भी होता है।
अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब सन्स ऑफ गॉड असल में सेथ के धार्मिक वंश के पुरुष थे, जिन्होंने अपनी धार्मिक मर्यादाएं तोड़कर केन के अधार्मिक वंश की स्त्रियों यानी डॉटर्स ऑफ मेन से विवाह कर लिया।
मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना होगा।
हाँ बताइए।
क्योंकि डॉक्टर मैथ्यूज की ये थ्योरी बहुत ही साधारण लगती है। अगर हम इसे प्राचीन पाठकों के नजरिए से देखें तो जॉब की किताब में जब स्पष्ट रूप से सन्स ऑफ गॉड का मतलब स्वर्गदूत बताया गया है तो क्या ये मान लेना ज्यादा तार्किक नहीं है कि वे सचमुच स्वर्गदूत ही थे?
मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं।
मेरा मतलब है, स्वर्गदूतों वाली थ्योरी शब्दों के मूल अर्थ और उस समय की अलौकिक मानसिकता के ज्यादा करीब लगती है ना। इसे महज दो कबीलों के बीच का विवाह मान लेना क्या मूल पाठ के साथ नाइंसाफी नहीं है?
प्रथम दृष्टया ऐसा लग सकता है कि स्वर्गदूतों वाली थ्योरी ज्यादा प्रमाणिक है, लेकिन अगर हम इसे प्राचीन इसराइलियों के नजरिए से गहराई से देखें जिनके लिए ये सब लिखा गया था, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है।
कैसे?
डॉक्टर मैथ्यूज बहुत मजबूत तर्क देते हैं। सबसे पहली बात, जेनेसिस के अध्याय 1 से लेकर 5 तक कहीं भी स्वर्गदूतों की कोई भूमिका ही नहीं है।
अच्छा, हाँ ये तो है।
पूरी कहानी सिर्फ इंसानों, उनकी वंशावलियों और उनके पतन के इर्द गिर्द घूमती है।
अचानक अध्याय 6 में स्वर्गदूतों का आ जाना कहानी के प्रवाह को तोड़ देता है।
लेकिन क्या ये असंभव है कि अचानक कोई नई अलौकिक घटना घट जाए? असंभव नहीं है, लेकिन हमें संदर्भ को देखना होगा। इसके तुरंत बाद ईश्वर जो सजा सुनाते हैं वो इंसानों को दी जाती है, स्वर्गदूतों को नहीं। जल प्रलय इंसानों को खत्म करने के लिए आया था।
लॉजिकल पॉइंट है। अगर गलती स्वर्गदूतों की थी तो सजा इंसानों को क्यों मिलेगी?
बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इजरायलियों के लिए इतिहास में सबसे बड़ा खतरा कोई स्वर्गदूत नहीं था बल्कि उनके आसपास के मूर्ति पूजक कबीले थे। उन्हें कनानियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने से बार बार रोका गया था।
हाँ।
इसलिए एक धार्मिक कबीले का अधार्मिक कबीले के साथ घुल मिल जाना और अपनी पहचान खो देना उनके लिए किसी अलौकिक कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी और वास्तविक चेतावनी थी।
वाह, ये तर्क वाकई बहुत मजबूत है। यानी ये कहानी आसमान से उतरे एलियंस या फरिश्तों के बारे में नहीं थी, बल्कि ये अस्मिता और मर्यादाओं के टूटने की एक गहरी चेतावनी थी।
एकदम सही समझे आप।
और जब ये मर्यादाएं पूरी तरह टूट गईं, तो ईश्वर को एक नई सीमा तय करनी पड़ी।
बिल्कुल। जब पाप चरम पर पहुंच गया, तो ईश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी जीवन देने वाली सांस मनुष्यों के साथ अनंत काल तक संघर्ष नहीं करेगी। उन्होंने एक समय सीमा निर्धारित कर दी, 120 वर्ष।
हाँ, क्या ये 120 साल लोगों की नई अधिकतम उम्र थी?
कुछ विद्वान इसे अधिकतम उम्र मानते हैं क्योंकि मूसा ठीक 120 साल जिए थे, लेकिन डॉक्टर मैथ्यूज और कई अन्य विशेषज्ञ इसे एक मोहलत या अल्टीमेटम मानते हैं।
मोहलत मतलब एक काउंटडाउन?
हाँ, जल प्रलय आने से पहले मानव जाति के पास सुधरने के लिए 120 साल का समय था। ये ईश्वर के धैर्य के खत्म होने का समय था।
और इसी 120 साल के उथल पुथल वाले दौर में नेफिलिम का जिक्र आता है। मैंने देखा है कि बाद की किताबों में इन्हें बहुत बड़े राक्षसों या दानवों के रूप में दिखाया गया। क्या ये सचमुच जेनेटिक रूप से अलग कोई भीमकाय प्रजाति थी?
और यहीं पर अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं और कल्पना की उड़ान भरने लगते हैं। डॉक्टर मैथ्यू स्पष्ट करते हैं कि नेफिलिम शब्द का मतलब अनिवार्य रूप से कोई जेनेटिक म्यूटेशन या बायोलॉजिकल दानव नहीं था।
तो फिर वो क्या थे?
जेनेसिस का पाठ उन्हें प्राचीन काल के शूरवीर या प्रसिद्ध पुरुष कहता है। ये शब्द उनके शारीरिक आकार से ज्यादा उनके हिंसक, क्रूर और दबंग स्वभाव को दर्शाता है। वे उस समय के खूंखार योद्धा थे।
अच्छा, यानी वे उस प्राचीन दुनिया के क्रूर तानाशाह थे। इसे इस तरह समझा जा सकता है जैसे सिनेमा इतिहास में डार्थ वेडर का चरित्र है।
डार्थ वेडर? हाँ बिल्कुल।
मतलब एक ऐसा क्रूर और खूंखार खलनायक जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही लोगों में दहशत फैल जाती है।
डार्थ वेडर की उपमा यहाँ एकदम फिट बैठती है। नेफिलिम उस समय क्रूरता के ऐसे ही प्रतीक बन गए थे। उनके आतंक का मनोवैज्ञानिक प्रभाव इतना गहरा था कि वो सदियों बाद तक लोगों के जहन में जिंदा रहा। यही कारण है कि जब बहुत समय बाद मूसा के जासूसों ने कनान देश में शक्तिशाली दुश्मनों को देखा तो उन्होंने डर के मारे उन्हें वापस नेफिलिम कहना शुरू कर दिया।
मतलब वो एक तरह का पीढ़ीगत आघात या जेनरेशनल ट्रॉमा था। कनान के वो दुश्मन असल में नेफिलिम नहीं थे, लेकिन उनके खौफ ने जासूसों को वही प्राचीन नाम इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया।
बिल्कुल, जैसे आज भी हम किसी क्रूर शासक को हिटलर कह देते हैं।
बिल्कुल सटीक। नेफिलिम बुराई, हिंसा और असीमित ताकत के प्रतीक बन चुके थे। पूरी धरती हिंसा से भर चुकी थी। मानव समाज पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका था।
हर तरफ सिर्फ हाहाकार था, और स्रोत बताते हैं कि इस सब को देखकर ईश्वर का हृदय शोक से भर गया।
ये एक बहुत ही मानवारूपी या एंथ्रोपोमॉर्फिक वर्णन है ना?
हाँ, ये ऐसा नहीं था कि ईश्वर को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था कि इंसान बनाकर कोई तकनीकी गलती हो गई। इसके बजाय ये गहरी पीड़ा थी,
एक क्रिएटर की पीड़ा।
बिल्कुल, ईश्वर ने इंसान को अपने साथ एक पवित्र और सुंदर जीवन साझा करने के लिए बनाया था, लेकिन अब इंसान के दिलों के विचार सिर्फ और सिर्फ बुरे हो गए थे। ये एक रचयिता के गहरे दुख की स्थिति थी,
और इसी दुख से जो फैसला निकला वो बहुत ही भयानक था, जल प्रलय।
और जल प्रलय महज एक बड़ी बाढ़ नहीं थी। डॉक्टर मैथ्यूज इसे एक बहुत ही गहरा शब्द देते हैं, सृष्टि का उलटना या अनक्रिएशन।
उफ, ये शब्द अपने आप में सिहरन पैदा करने वाला है। सृष्टि का उलटना तकनीकी रूप से कैसे काम करता है?
इसे समझने के लिए आपको जेनेसिस अध्याय 1 को याद करना होगा। सृष्टि की शुरुआत में क्या था?
सिर्फ गहरा, असीमित और अंधकार में जल।
बिल्कुल, फिर ईश्वर ने उस जल को विभाजित किया, सीमाएं तय की और सूखी जमीन निकाली ताकि जीवन पनप सके। जल प्रलय उसी पूरी प्रक्रिया का रिवर्स गियर था।
अच्छा, मतलब सीमाएं वापस हटा दी गई।
हाँ, ईश्वर ने जल की उन सीमाओं को हटा दिया। नीचे के सोतों और ऊपर के आकाश से पानी वापस उसी तरह आकर मिल गया जैसे सृष्टि से पहले था। पूरी पृथ्वी वापस उसी अनुत्पादक, निर्जन और गहरे जल वाली अंधकारमय स्थिति में धकेल दी गई।
तो ये महज विनाश नहीं था, ये पूरी दुनिया का एक ब्रह्मांडीय रीसेट था।
इसे सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी महान चित्रकार ने एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई हो, लेकिन धीरे धीरे उस पर इतनी गंदगी और कीचड़ उछाल दी गई हो कि पेंटिंग की मूल सुंदरता पूरी तरह से छिप गई हो, और अंततः चित्रकार भारी मन से पूरे कैनवस को पानी से धो डालता है।
लेकिन वो कैनवस को पूरी तरह से खाली नहीं छोड़ता।
बिल्कुल, उस धुले हुए कैनवस पर वो उम्मीद के तौर पर एक छोटा सा बेदाग कोना बचा लेता है, और वो कोना था नूह।
हाँ, नूह। और नूह का नाम भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आता है। जब उसके पिता लेमेक, यहां मैं बता दूं बात सेथ के वंश वाले लेमिक की हो रही है, केन वाले हत्यारे की नहीं।
हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है।
तो जब उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा तो भविष्यवाणी की कि यह इंसान दुनिया को श्राप से आराम देगा।
हिब्रू भाषा में नूह का नाम आराम या कम्फर्ट के समान ध्वनि करता है। डॉक्टर मैथ्यूज के अनुसार नूह एक नए आदम की तरह है।
नया आदम?
हाँ, क्योंकि पहली सृष्टि का आदम असफल हो गया था, लेकिन अब इस ब्रह्मांडीय रीसेट के बाद नूह के जरिए एक नई शुरुआत होने वाली थी। वो तैरता हुआ जहाज महज लकड़ी का एक ढांचा नहीं था, बल्कि वो उस जलमग्न और पतित दुनिया में जीवन और उम्मीद का एकमात्र सुरक्षित स्थान था।
यानी वो महायोजना जो आदम से शुरू हुई थी, वो नूह के परिवार के माध्यम से संरक्षित कर ली गई।
बिल्कुल।
तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि जेनेसिस के ये अध्याय सिर्फ नामों की कोई नीरस सूची नहीं है, ये एक बहुत ही स्पष्ट और सच कहूं तो खौफनाक ब्लूप्रिंट है।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे आदम से शुरू हुई कहानी हनोक के धार्मिक जीवन की उम्मीद से गुजरते हुए लंबी उम्र के साथ बढ़ता पाप, टूटती मर्यादाओं और निफिलीम की क्रूरता तक पहुंच गई।
और ये भी कि कैसे उस निरंतर पतन ने अंततः एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां सृष्टि को पूरी तरह से रीसेट करना ही एकमात्र विकल्प बचा था।
मैं समझती हूँ कि ये प्राचीन ज्ञान हमें याद दिलाता है कि नैतिक सीमाओं का बहुत गहरा महत्व होता है। जब कोई समाज सामूहिक रूप से अपनी मर्यादाएं तोड़ता है तो उसका परिणाम सिर्फ कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी प्रकृति और ईश्वरीय व्यवस्था को हिलाकर रख देता है।
बिल्कुल सही कहा। और इस चर्चा के अंत में एक विचार है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है।
वो क्या?
देखिए, इन मूल स्रोतों के अनुसार प्राचीन काल में नैतिक पतन, असीमित हिंसा और मर्यादाओं के निरंतर उल्लंघन ने दुनिया को एक भौतिक रीसेट की ओर धकेल दिया था।
बिल्कुल।
तो आज की आधुनिक दुनिया में जहां तकनीक और विकास अपने चरम पर हैं, ये पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है कि प्रगति और पतन के बीच की रेखा कहां खिंचती है।
वाकई ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
तो सोचने वाली बात यह है, क्या आज का समाज भी अपनी टूटती हुई नैतिक और प्राकृतिक सीमाओं के कारण किसी अलग तरह के रीसेट के मुहाने पर खड़ा है? ये एक ऐसा सवाल है जो प्राचीन इतिहास को सीधे आज के हमारे वर्तमान से जोड़ देता है। भविष्य में जब भी इतिहास के पन्ने पलटे जाएं, तो इन प्राचीन चेतावनियों को जरूर याद रखा जाना चाहिए।